क्रिश्चिय जीवन में एक प्रश्न उठता है, एक सवाल खड़ा होता है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जिस पर किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ईश्वर का आदर करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर में विश्वास जताना, ईश्वर की क्षमा याचना करना, आज्ञाओं का पालन करना, अनुशासन में रहना। अगर हम प्रभु से ये प्रश्न करते हैं तो प्रभु तुरंत ही हमें जवाब देंगे, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर को प्यार करना। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि एक पापिनी स्त्री प्रभु के पास आती है और वो क्या करती है, एक शब्द में कहा जाए तो प्यार करती है, वो प्यार करती है। और वो प्यार करती है किसको पता चलता है, कैसे पता चलता है, क्योंकि वो प्यार दिखाती है। प्यार अगर हम करते हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा, प्यार दिखाने से पता चलेगा। प्यार दिखाने की चीज नहीं है, लेकिन प्यार दिखाने से ही लोगों को ये महसूस होता है कि ये प्यार करता है या करती है। ये पापिनी स्त्री प्रभु के पास आकर प्रभु से ये नहीं कहती कि हे प्रभु मैं पापिनी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को दूर कर, मेरे पापों को क्षमा कर, इस प्रकार की बात वो नहीं करती है। बस प्रभु के पास आती है और वो प्रभु के चरणों पे रहती है और प्रभु के प्रति अपना प्यार दिखाती है, प्यार दिखाती है। प्रभु का वचन कहता है लूकास का सुसमाचार अध्याय 7:38, नगर 37, नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई, इससे अच्छा पात्र नहीं मिल सकता, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आते और उस पात्र में इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती इत्र, और सुसमाचार के लेकर कहेंगे बहुत महंगा महंगी चीज लेके आती है, इत्र लेके आते हैं। और वो क्या करती है, रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी भावना को प्रकट करना है, उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता रोना है, रोना है। अगर कोई रोता है तो कौन ऐसा व्यक्ति होता है उसके सामने सिर नहीं झुकेगा, सब अपने रोने वाले के सामने सिर झुकाता है, तो हमारा सिर झुक जाता है रोने वाले के सामने। किसी भी व्यक्ति को अपनी भावनाओं को प्रकट करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है रोना, और रोकर अपने मन की भावना को, अपने हृदय की भावना को, हृदय की गहराई की भावना को वो प्रकट करने लगती है। और आगे रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो जाती है। चरणों के पास खड़ी होना, ज़्यादातर लोग चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करना मतलब पूरी तरह अपने को एक प्रकार से किसी व्यक्ति का गुलाम मानना, गुलाम मानना, चरणों पर रहना, चरण स्पर्श करना, यानी सब कुछ मानना, उस व्यक्ति को इतना आदर देना कि जो भी आदेश है मैं करूँगा, मैं करूँगी। चरणों में रखना मतलब अपने आप को गुलाम बनाना, दास बनाना। रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई, उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगी, इसीलिए उसने उन्हें अपने केश से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है? अपने पाप के बारे में कुछ नहीं कहती है, वो कुछ नहीं बोलती। बाद में प्रभु कहेंगे मैं तुमसे कहता हूँ, वाक्य 47, मैं तुमसे कहता हूँ इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। पेत्रुस का पहला पत्र 4:8 कहता है, पेत्रुस का पहला पत्र 4:8, प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। जो बहुत पापी है और उसको मालूम नहीं है कि अभी प्रभु के सामने जाकर क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कुछ नहीं कहना है, बस प्यार करना है प्रभु को। प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है। यूहन्ना के सुसमाचार के 3:16 में प्रभु के इस धरती पर आने का कारण बताया गया है। परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। अपने एकलौते पुत्र को भी भेजकर ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्यार दिखाया। और जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं, हम प्रभु के प्यार का जवाब हमारे प्यार से हम देने लगते हैं, यानी हमारे और प्रभु के बीच में प्यार होता है। और प्यार कैसे होता है? किसी के हृदय में हम प्यार नहीं डाल सकते। प्यार का मतलब पवित्र आत्मा का प्रभाव है, क्योंकि प्यार पवित्र आत्मा की शक्ति है प्यार। संत योहन ने इसका बहुत अनुभव किया था। संत योहन अपने बारे में कहते हैं, वह शिष्य जिसको यीशु ने प्यार किया अपने बारे में संत योहन यही कहते हैं, वह शिष्य जिसको प्रभु ने प्यार किया, क्योंकि उसने प्रभु के प्यार का अनुभव किया। और इसलिए अपने पत्र में संत योहन अपने पहले पत्र में 3:1 में प्रश्न करने लगते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। संत योहन का पहला पत्र 3:1, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम जानते हैं योहन के सुसमाचार के 21 में 3 बार प्रभु यीशु पेत्रुस से प्रश्न करते हैं। पेत्रुस, सीमोन, योहन के पुत्र सीमोन, क्या तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? क्या तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? 3 बार प्रश्न करते हैं। और जैसे पेत्रुस उसका जवाब देते हैं, प्रभु कहते हैं मेरे भेड़ों को संभालो, मेरे भेड़ों के लिए गड़ेरिया बनो, मेरे मेमनों को संभालो। इस प्रकार कलीसिया के रेवट को चलाने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए संत पेत्रुस को नियुक्त करते हैं। अगर ईश्वर किसी को अपनी प्रजा को संभालने का दायित्व देते हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर ये जानते हैं कि ये व्यक्ति ईश्वर को प्यार करते हैं। पापी स्त्री प्यार दिखाती है, इसलिए ईश्वर उनके पापों को क्षमा करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के 2:2-6 में, प्रकाशना ग्रंथ के 2:6 में प्रभु एफेसुस की कलीसिया से कुछ कहते हैं, मैं तुम्हारा आचरण, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। तुम्हारा आचरण, अच्छा आचरण करते हो, तुम्हारा परिश्रम, बहुत मेहनत करते हो, धीरज बने रहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, किसी भी दुष्ट को तुम सही नहीं करते, यानी गलत काम में तुम शामिल नहीं होते हो, यह सब मैं जानता हूं। किंतु आगे प्रभु कहेंगे अध्याय 2 के वाक्य 4 में, किंतु मुझे तुमसे एक ही शिकायत है, वो यह है तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। तुम बहुत अच्छे हो, अनुशासन में रहते हो, सब कुछ ठीक से करते हो, बहुत काम करते हो, परिश्रम बहुत करते हो और तुम्हारा आचरण बहुत बढ़िया है, लेकिन एक शिकायत है, पहले जैसा प्रेम तुम्हारे हृदय में नहीं है। हमें से कई लोग ये महसूस करेंगे, जैसे जैसे हम प्रभु की सेवा में प्रभु की बात करके आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमसे ये भी शिकायत करेंगे, तुम्हारे अंदर पहले जैसा प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर पहले जैसा प्रेम नहीं है। याकूब के पत्र के अध्याय 2 के वाक्य 23 में, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 23 में इब्राहिम को एक नाम दिया है, ईश्वर का मित्र नाम दिया है इब्राहिम को। याकूब के पत्र में ईश्वर का मित्र कहा गया है, बाइबल के अंदर किसी को भी ईश्वर का मित्र नहीं कहा गया है, सिर्फ इब्राहिम को कहा गया है। मूसा के बारे में कहेंगे कि ईश्वर के साथ मूसा इस प्रकार बात करते थे जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने मित्र से बात कर रहा हो, लेकिन इब्राहिम के बारे में कहा गया वो ईश्वर के मित्र था, क्योंकि इब्राहिम ने ईश्वर को बहुत प्यार किया था। हम जानते हैं विश्वास में हमारे पिता है इब्राहिम, और इसलिए ईश्वर का मित्र कहलाते। अगर हम भी इसके काबिल होंगे कि हम ईश्वर के मित्र कहलाएंगे, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। एफिसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 वाक्य 14 से 19 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अध्याय 3 वाक्य 14 से 19, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ईश्वर के सामने घुटने टेक कर संत पौलुस प्रार्थना करते हैं कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। संत पौलुस कहते हैं मैं घुटने टेक कर प्रभु के सामने आप लोगों के लिए, एफेसियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके अभ्यंतर में शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। क्या के लिए, क्यों, किस बात के लिए, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो, इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। तदपुलुस कूटने टेक प्रार्थना करते हैं, आप लोग, मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप लोग मसीह के प्रेम की चौड़ाई लंबाई ऊंचाई गहराई समझ लें। संत पौलुस को मालूम नहीं है कि किस प्रकार मैं इसका विवरण दूँ, मसीह के प्रेम के बारे में क्या बोलूँ, तो वो बोलने लगते हैं, ढूंढ ढूंढ के अपने लिए शब्दों को ढूंढते रहते हैं और ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं मसीह के प्यार की ऊंचाई गहराई चौड़ाई लंबाई, ये सब आप लोग समझ लें। मसीह के प्यार के बारे में बहुत कुछ सपने हैं, बहुत कुछ हमें समझना है। उनके शरीर से निकले हुए एक एक बूंद प्यार की कहानी है, उनके ईश्वर के प्यार की कहानी है, उनके शरीर से निकला हुआ रक्त उसकी एक एक बूंद प्रभु ईश्वर के प्यार की कहानी है, और उनके चेहरे पर उनकी आंखों में उस प्रेम का झलक है। जैसे ही मसीह ने प्रभु यीशु ने पेत्रुस की ओर देखा, अविश्वास जो जिसने प्रभु यीशु का अस्वीकार किया था, उस प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु ने मुड़कर उसकी ओर देखा, उनके आंखों में प्रेम झलकता था। उसको देखकर पेत्रुस रोने लगता है क्योंकि उसको अनुभव हुआ मसीह के प्रेम की कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितनी ऊंचाई होती है, कितनी गहराई होती है। तो आइए इसमें संविधान में हम परमपिता ईश्वर से निवेदन करें कि हम भी प्रभु ईश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, हमारे मसीह, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई को भली भांति समझ सकें।